हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ज़ोया को होश आ गया था। उसे अपनी बेटी के जन्म की खबर मिलते ही उसके अंदर एक नई हिम्मत का एहसास हुआ था। अबीर सिंह राठौड़ में ज़ोया से आंखें मिलाने का साहस नहीं था। ज़ोया ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि आज तीसरा दिन था। ज़ोया खुद को काफी हद तक स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने रूटीन चेकअप के लिए आई डॉक्टर से कहा, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, मैडम बस थोड़ी देर और, मैं अभी आपको आपकी बेटी के पास ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ोया की दवाइयों में कुछ बदलाव करने लगी। फिर उसने कहा, अब आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर की बात सुनकर ज़ोया मुस्कुराई और धीरे धीरे उनके साथ अपनी बेटी के स्पेशल केयर वार्ड की ओर चल पड़ी। जैसे ही ज़ोया कमरे से बाहर निकली, उसने देखा अबीर सामने वाली सीट पर सो रहा था। ज़ोया कुछ पल के लिए रुक गई और खाली नज़रों से उसकी ओर देखने लगी। डॉक्टर ने ज़ोया की नज़रों का पीछा किया और बोली, आपके पति मिस्टर अबीर सिंह राठौड़ पिछले तीन दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। ना तो वे आराम करने गए हैं और न ही कहीं गए हैं। बस केवल तीन दिनों से शीशे के माध्यम से आपको देख रहे हैं। ज़ोया के दिल में एक चुभन सी हुई। थोड़ी देर बाद ज़ोया अपनी बेटी के स्पेशल केयर वार्ड के सामने खड़ी थी। उसने देखा उसकी बेटी को एक छोटे से शीशे के अंदर रखा गया था, जहां उसके हाथों में कुछ नलियां लगी हुई थीं और उसे दवाइयां और भोजन दिया जा रहा था। अपनी बेटी को देखते ही ज़ोया की आंखें भर आईं और वो खामोशी से उसे देखती हुई रोने लगी। आधा घंटा अपनी बेटी को देखने के बाद ज़ोया ने डॉक्टर से पूछा, मैं उसे कब अपने साथ ले जा सकती हूँ? डॉक्टर ने उसे उसकी बेटी की पूरी स्थिति समझाई और बताया, अगले तीन महीनों तक, जब तक आपकी बेटी पूरी तरह से परिपक्व यानी 9 महीने की नहीं हो जाती, तब तक उसे यहीं रखना होगा। 9 महीने पूरे होने पर आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं, लेकिन तब तक उसे यहीं रहना होगा। अगर हमने उसे यहाँ से निकालने की कोशिश भी की तो उसे सांस लेने में समस्या हो सकती है, जिससे बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर ज़ोया व्याकुल हो गई। नहीं नहीं, तीन महीने की जगह चाहे चार महीने मेरी बेटी को इस स्पेशल केयर वार्ड में रखें, लेकिन मुझे मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित चाहिए, किसी भी कीमत पर। डॉक्टर ने कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। और मैडम, आप यहाँ काफ़ी देर से खड़ी हैं, मुझे लगता है आपको भी आराम करना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर ज़ोया ने उन्हें खाली नज़रों से देखा और कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहूँगी। डॉक्टर ने कोई विरोध नहीं किया, ठीक है मैडम, आप चाहें तो अपने कमरे में आराम कर सकती हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके कमरे में जो इमरजेंसी अलार्म है आप उसे बजा सकती हैं। ओके, डॉक्टर ने ज़ोया को कुछ दवाइयाँ दीं और फिर कुछ नर्सों के हाथों उसे ऊपर वाले फ्लोर पर उसके कमरे में शिफ्ट करवा दिया। अबीर सिंह राठौर ज़ोया के इमरजेंसी वार्ड के सामने सोता रहा। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने हमेशा की तरह ज़ोया को कमरे के दरवाजे पर शीशे से देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, वह चौंक गया, क्योंकि वहां बिस्तर पर ज़ोया नहीं थी। ये देखकर अबीर को लगा मानो उसके शरीर से जान निकल रही हो। अबीर घबरा गया और फटाफट दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उसने बाथरूम और हर जगह देखा, लेकिन ज़ोया कहीं नहीं मिली। तब अबीर जोर जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। सभी डॉक्टर अबीर की आवाज़ सुनकर उसके सामने आ गए। अबीर राठौर ने सभी डॉक्टरों पर गौर से देखा और कहा, मेरी पत्नी कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ? जवाब दो मुझे। उस वक्त वो डॉक्टर भी मौजूद थी जिसने ज़ोया को उसके कमरे में शिफ्ट करवाया था। वो सामने आई और बोली, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है साहब, और उन्हीं के कहने कर हमने उन्हें ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। ये सुनकर अबीर ने राहत की सांस ली और इशारे से सबको वहाँ से जाने के लिए कहा। वो खुद ऊपर जाने लगा। इधर गज़ाला जी अपने बेटे अकरम और रिया को लेकर अबीर सिंह राठौड़ के घर पहुंच चुकी थीं। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा रिया को अकरम फल काटकर खिला रहा था। गज़ाला जी ने एक पल के लिए उन दोनों को देखा और फिर वहां पड़ी एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। अकरम और रिया की नज़र भी उन पर पड़ी, लेकिन दोनों ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अकरम अभी भी अकरम के अपहरण के गुस्से में था और अरहम को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया था। रिया ने अकरम के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और अकरम का हाथ पकड़ लिया, उसे कुछ न करने का इशारा किया। तभी अरहम लंबी सांस लेते हुए अकरम और रिया के सामने डाइनिंग टेबल पर जा बैठा और बोला, मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझसे बहुत नाराज हो। अरमान भाई ने जो भी किया मैं उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ। हो सके तो उसे माफ़ कर देना। तुम जानते हो अरमान भाई ज़ोया से कितना प्यार करते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ज़ोया के प्यार में ही अरमान भाई ने रिया को नुकसान पहुँचाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। ज़ोया के बारे में जो कुछ भी जानते हो बता दो। कहाँ है ज़ोया? मैं वादा करता हूँ अरमान भाई उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों मेरी बात सुन रहे हो ना? ऐसा कहते हुए अरहम ने अपना हाथ अक्रम के हाथ पर रख दिया। अक्रम पहले से ही भड़के हुए थे। उसने अरहम का हाथ छटक दिया और गुस्से से उसकी ओर देखा। ज़ोया कहाँ है कहाँ नहीं है हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, और अरहम ठाकुर अगर हम जानते भी होते तो भी हम तुम्हें नहीं बताते कि ज़ोया कहाँ है, समझे तुम? इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अक्रम की बात सुनकर अरहम पूरी तरह से भड़क गया और गहरी नज़रों से उन दोनों को देखने लगा। ये देखकर अक्रम का सब्र टूट गया और उसने जोरदार तमाचा अरहम के मुंह पर मार दिया। रिया चौंक उठी और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अरहम को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। अक्रम की हरकत से अरहम पागल हो गया और उसने अपने दोनों हाथ मुट्ठी में कस लिए। क्योंकि गजाला जी दूसरी ओर मुंह करके बैठी थीं, उन्हें पीछे क्या हुआ पता ही नहीं चला। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अरहम ने अक्रम और रिया पर एक नज़र डाली और बोला, आज तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा तुम दोनों को भुगतना होगा। अपनी ठंडी आवाज़ में अरहम ने अक्रम और रिया को धमकी दी और वहाँ से निकल गया। गजाला जी उसे आवाज़ देती रहीं, लेकिन अरहम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गजाला जी ने पीछे मुड़कर अक्रम और रिया की ओर देखा और बिना कुछ बोले अरहम के पीछे पीछे बाहर निकल गईं। इधर अबीर सिंह राठौड़ ज़ोया के कमरे के सामने खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर दिल की मजबूरी ने उसे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर किया। उसने देखा ज़ोया बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमज़ोरी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। अबीर ज़ोया के पास गया और तकिया लगाने में उसकी मदद करने लगा। तकिया ठीक करते वक्त उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं, लेकिन ज़ोया ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। अबीर ने ज़ोया को ठीक से बैठा दिया। ज़ोया ने अबीर की ओर नहीं देखा, लेकिन अबीर उसे देख रहा था। ज़ोया का चेहरा निशानों से भरा हुआ था। ज़ोया का चेहरा देखकर अबीर को अपने ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि ये उसके क्रूर व्यवहार की गवाही दे रहा था। अबीर ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया, ज़ोया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जो भी सज़ा दोगी वो मुझे कबूल होगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे कभी नफ़रत मत करना। तुम्हारी नफ़रत मेरा ये दिल सह नहीं पाएगा। अबीर लगभग रोते हुए ज़ोया से विनती कर रहा था। ज़ोया ने गहरी सांस ली और अबीर की ओर देखते हुए बोली,
अबीर साहब, जो भी मेरे साथ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, और मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष कोई नफ़रत नहीं है। और अबीर साहब, मेरे शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको सहन कर पाऊँ। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही ज़ोया ने ये कहा, अबीर को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने खंजर से 100 बार वार कर दिए हों। ज़ोया की बातों ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। अबीर की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, लेकिन ज़ोया का चेहरा एकदम सपाट था, वहाँ कोई भाव नहीं थे।